नमस्कार, जनसत्ता में सुनिए सुर्खियां, देश दुनिया की बड़ी खबरें। सोवियत संघ के अंतिम नेता मिखाइल गोर्बाचेव का मंगलवार को निधन हो गया। वो 91 वर्ष के थे। गोर्बाचेव ने सोवियत संघ में कई सुधार करने की कोशिश की और इसी कड़ी में उन्होंने साम्यवाद के अंत, सोवियत संघ के विघटन और शीत युद्ध की समाप्ति में अहम भूमिका निभाई। मॉस्को स्थित सेंट्रल क्लिनिकल हॉस्पिटल ने एक बयान में बताया कि गोर्बाचेव का लंबी बीमारी के बाद निधन हो गया। कोई अन्य जानकारी नहीं दी गई है। गोर्बाचेव 7 साल से कम समय तक सत्ता में रहे, लेकिन उन्होंने कई बड़े बदलाव शुरू किए। इन बदलावों ने जल्द ही उन्हें पीछे छोड़ दिया, जिसके कारण अधिनायकवादी सोवियत संघ विघटित हो गया। पूर्वी यूरोपीय राष्ट्र रूसी प्रभुत्व से मुक्त हुए और दशकों से जारी पूर्व पश्चिम परमाणु टकराव का अंत हुआ। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने गोर्बाचेव को उल्लेखनीय दृष्टिकोण वाला व्यक्ति और एक दुर्लभ नेता करार दिया, जिसके पास ये देखने की कल्पना शक्ति थी कि एक अलग भविष्य संभव है और जिसके पास उसे हासिल करने के लिए अपना पूरा करियर दांव पर लगा देने का साहस था। बाइडेन ने एक बयान में कहा, इसके परिणाम स्वरूप दुनिया पहले से अधिक सुरक्षित हुई तथा लाखों लोगों को और स्वतंत्रता मिली। एक राजनीतिक विश्लेषक एवं मॉस्को में अमेरिका के पूर्व राजदूत माइकल मैकफॉल ने ट्वीट किया कि गोर्बाचेव ने इतिहास को जिस तरह से एक सकारात्मक दिशा दी है, वैसा करने वाला कोई अन्य व्यक्ति बमुश्किल ही नजर आता है। गोर्बाचेव के वर्चस्व का पतन अपमानजनक था। उनके खिलाफ अगस्त 1991 में तख्ता पलट के प्रयास से उनकी शक्ति निराशाजनक रूप से समाप्त हो गई। उनके कार्यकाल के आखिरी दिनों में एक के बाद एक गणतंत्रों ने स्वयं को स्वतंत्र घोषित किया। उन्होंने 25 दिसंबर 1991 में इस्तीफा दे दिया। अमेरिका ने बाढ़ग्रस्त पाकिस्तान को $3 करोड़ की मानवीय सहायता देने की मंगलवार को घोषणा की। अमेरिका के विदेश मंत्री एंथनी ब्लिंकन ने कहा, हम इस मुश्किल घड़ी में पाकिस्तान के साथ खड़े हैं। उन्होंने कहा, पाकिस्तान के भयानक बाढ़ की चपेट में आने के कारण अमेरिका USAID के जरिए भोजन, सुरक्षित पेयजल और आश्रय जैसी महत्वपूर्ण मानवीय सहायता के लिए $3 करोड़ प्रदान कर रहा है। विदेश मंत्रालय के प्रधान उप प्रवक्ता वेदांत पटेल ने पत्रकारों को बताया कि बाढ़ से अनुमानित 3.3 करोड़ लोग प्रभावित हुए हैं और 1,100 से अधिक लोगों की जान गई है, जबकि 1,600 से अधिक लोग घायल हैं। पटेल ने बताया कि यूनाइटेड स्टेट्स एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट के साझेदार इस कोष का इस्तेमाल भोजन, पोषण, सुरक्षित पेयजल, बेहतर स्वच्छता, आश्रय, सहायता आदि जरूरी मदद मुहैया कराने के लिए करेंगे। पाकिस्तान हाल ही के इतिहास में सर्वाधिक भीषण बाढ़ का सामना कर रहा है। अमेरिका के न्याय मंत्रालय ने कहा कि उसे पता चला है कि देश के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के फ्लोरिडा स्थित आवास से मिले गोपनीय दस्तावेजों की जांच को रोकने के प्रयास किए गए थे। मंगलवार रात एक अदालत में दाखिल किए गए दस्तावेजों में ये खुलासा किया गया। मार आ लागो में मिले दस्तावेजों पर ट्रंप के प्रतिनिधियों और न्याय मंत्रालय के बीच हुई बातचीत के विस्तृत एवं क्रमवार विवरण में मंत्रालय ने यह जानकारी दी। अदालत को सौंपे दस्तावेजों में मंत्रालय ने कहा कि संघीय जांच ब्यूरो के अधिकारियों ने कई साक्ष्य प्राप्त किए हैं और जिनसे पता चलता है कि ट्रंप और उनके प्रतिनिधियों ने मार आ लागो से मिले दस्तावेजों के मामले में जांच में सहयोग नहीं किया। व्हाइट हाउस ने कहा है कि यूक्रेन के साथ अकारण एवं बर्बर युद्ध छेड़ने वाले रूस के साथ किसी भी अन्य देश का अभ्यास करना उसके लिए चिंताजनक है। व्हाइट हाउस ने रूस में 1 से 7 सितंबर के बीच होने वाले कई देशों के सैन्य अभ्यास वोस्तोक 2022 के बारे में पूछे गए प्रश्न के उत्तर में ये बात कही। इस सैन्य अभ्यास में भारत और चीन भी हिस्सा ले रहे हैं। यूक्रेन के खिलाफ युद्ध छेड़ने के बाद से रूस में होने जा रहा ये पहला बड़े स्तर का अभ्यास है। व्हाइट हाउस के प्रेस सचिव जीन पियरे ने एयरफोर्स वन विमान पर पत्रकारों से कहा, किसी भी देश का रूस के साथ अभ्यास करना अमेरिका के लिए चिंताजनक है, क्योंकि रूस ने यूक्रेन के खिलाफ अकारण युद्ध छेड़ा है, लेकिन भाग लेने वाले प्रत्येक देश को खुद निर्णय लेना है और मैं ये फैसला उन पर छोड़ती हूँ। जब पियरे से ये पूछा गया कि क्यों भारत पर कोई दबाव नहीं है, तो उन्होंने कहा, इस बारे में मेरा कहना यही है कि रूस ने बेवजह युद्ध छेड़ा हुआ है, इसलिए किसी भी देश का उसके साथ अभ्यास करना चिंताजनक है। पत्रकार ने प्रेस सचिव से प्रश्न किया कि क्या अमेरिका ने इस संबंध में कोई कार्रवाई की या वो किसी प्रकार की योजना बना रहा है। उन्होंने कहा, मेरे पास इस बारे में बताने लायक कुछ नहीं है। पश्चिमोत्तर नाइजीरिया में मंगलवार को 3 मंजिला इमारत के ढहने से कई लोग फंस गए। आपात कार्रवाई कर्मियों ने एसोसिएटेड प्रेस को बताया कि मलबे से कम 8 लोगों को बाहर निकाला जा चुका है और अन्य लोगों की तलाश जारी है। देश के आपात प्रबंधन एजेंसी के प्रमुख नूरा अब्दुल्लाही ने बताया कि उत्तरी नाइजीरिया के वाणिज्यिक केंद्र कानो राज्य में कारोबारी केंद्र के रूप में इमारत का निर्माण किया जा रहा था, लेकिन इसके भूतल पर कई दुकानें थीं और वो खुल चुकी थी। उन्होंने बताया कि 8 लोगों को बचाया गया है और किसी की मौत होने की फिलहाल कोई सूचना नहीं मिली है। उन्होंने बताया कि बचाए गए लोगों को चोटें आई हैं। अब्दुल्लाही ने बताया कि बचाव अभियान अभी जारी है और प्राधिकारियों ने अभी ये जानकारी नहीं दी है कि मलबे में कितने लोगों के दबे होने की आशंका है। विस्तार से खबरें पढ़ने के लिए आएं जनसत्ता.com पर। नमस्कार।